सभी हाथ हिलाकर वेलकम करेंगे भ्राता जी का। आपको भरपूर ज्ञान रत्नों के खजाने मिल रहे हैं। आज हमारे बीच में भ्राता आत्म प्रकाश जी, आप ज्ञान अमृत के चीफ एडिटर हैं, जो ज्ञान अमृत आप पढ़ते हो। और मैं समझती हूँ मंथली कितने भ्राता जी, 5 लाख के आसपास, 3.25 लाख, 3.25 लाख हर महीने ज्ञान अमृत प्रिंट होता है, पूरे विश्व में जाता है, इंग्लिश का वर्णावल भी, तो आप उसके चीफ एडिटर हैं। और 1957 में आपने पटियाला से ज्ञान प्राप्त किया, इंजीनियरिंग कर रहे थे वहाँ, यानी 57 में ज्ञान लिया, और 57 ईयर्स हो गए हैं ज्ञान लिए हुए। और आप और हम सबके लिए एक बहुत गर्व की बात ये भी है कि इतनी महान विभूति हमारे पंजाब जोन से हैं, हमारे हरियाणा से हैं, तो इसलिए विशेष वेलकम हम सब करते हैं, और इसमें अपने को बहुत भाग्यशाली इस बात के लिए एक्स्ट्रा समझते हैं। भ्राता जी परिवार में सबसे पहले आए, उसके बाद तो फिर कुरुक्षेत्र में ही लौकिक परिवार था पास में किसी गांव में, तो उसके बाद भाई भाभी बहन माता पिता मामे मामियां सब, हमारे सिरसा में भी हमारे पास भ्राता जी की रियल मामी राम प्यारी माता, कोई कोई माता उनमें से पुरानी माताएं जानती हैं राम प्यारी माता को, अभी 2-4 साल पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा, तो वो भी सिरसा में ही ज्ञान में चलती थी। भ्राता जी के यानी नानके सिरसा में है, यूं कह सकते हैं आप, और भी बहुत सारे रिश्तेदार ऑल इंडिया में, सबको ज्ञान में चला दिया, और 20 भ्राता जी ने डाला, इनके माध्यम से बाबा ने सबके अंदर 20 डाला। और अमृतसर वाले जो राज दीदी हैं, वो आपकी लौकिक बहन है, एक बहन है, बाकी भाई हैं, तो वो अमृतसर पूरे सर्कल के सब जोन इंचार्ज हैं, और हमारे पंजाब जोन की जो मुख्य दीदियां हैं, जैसे प्रेम दीदी, अचल दीदी, जलंधर वाले राज दीदी और अमृतसर वाले राज दीदी, ऐसे मुख्य 4-5 दीदियों में से एक दीदी हैं। और आपने साकार मम्मा बाबा की बहुत पालना ली है, दादी प्रकाशमणि जी के भी एकदम अंग संग 24 घंटे उनके साथ, इस अलौकिक ईश्वरीय कारोबार में सारा दिन ही आपका साथ ही रहना होता है, होता था। और आपकी लौकिक माता जी अभी हैं, हम लोग मिलने जाते हैं, तो उनकी उम्र मैं समझती हूँ चंद्र, अपने बड़े दादी के होते हुए उनका सेंचुरी मनाई थी मधुबन में, स्टेज पर 100 साला जन्मदिन मनाया था उनका, और उस बात को भी 7-8 साल हो गए होंगे, मैं समझती हूँ कि 108 साल के हैं माता जी, ये भी एक बहुत विशेष बात है, यानी बिना तप के और बढ़िया मिलती जुलती हैं, बातचीत करती हैं। और उससे वंडरफुल बात ये है कि 3-4 साल पहले माता जी गिर गए थे, चोट भी कोई फ्रैक्चर टाइप भी यहाँ हो गया था, दोबारा तंदुरुस्त हो गए, वंडरफुल बात। कोई सुने किसी 105 साल की उम्र में उसका कुल्ला टूट जाए और वो दोबारा चलने लग जाए मतलब ये बिना तप के, कहने का भाव है कि इतना समझो 57 वर्षों का एक तप और मम्मा बाबा की पालना और दादियों की समीप पालना, तो ये सारी चीजों की बदौलत बाबा का विशेष एक ब्लेसिंग और विशेष आशीर्वाद बाबा का इस परिवार पर बहुत बहुत विशेष है। तो ऐसी महान विभूति को अपने बीच में पाकर हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं। फिर से हम भ्राता जी का एक बार अभिनंदन करते हैं, और अभी हम आपके अनुभव सुनने चाहेंगे इतने वर्षों के। और बहुत रेयर फैमिलीज हैं ऐसी यज्ञ में जो एक ही परिवार के 20-20, 30-40, 50 मेंबर ज्ञान में चलते हों, ये अपने आप में बहुत तप के बिना नहीं होता है, और वही तप का बल ही आज तक भी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए काम कर रहा है। तो अभी ऐसे अनुभव हम भी सुनना चाहेंगे भ्राता आत्म प्रकाश जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण बाबा के बच्चे सभी महान हैं। बाबा तो जो कितनी महिमा बच्चों के करता है, ये बच्चे जो 7 दिन का भी बच्चा है उसने बाबा कह दिया और ये ज्ञान थोड़ा समझ भी लिया, कुछ याद कर दिया, सहयोगी बन गया, तो क्या होगा? वो भी राजधानी में आ जाएगा। अभी मुरली में था, राजधानी में तो आ ही जाएगा। और हम बच्चे तो देखो, आप तो भट्टी करने के लिए आए, कहां पर, ये कौन सा स्थान है? देखो ये प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा सरस्वती जिसके यहां कदम पड़े हैं, उसकी कर्म भूमियां उनकी, साथ साथ सभी पूर्वजों की। हमें तो खुशी, हमें तो बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम सभी जितने हमारे पूर्वज हैं, बाबा मम्मा तो है ही, शिव बाबा तो है ही, साथ में दादी प्रकाशमणि, दीदी चंद्रमणि दादी, दादा विश्व किशोर, दादा आनंद किशोर, दादा चंद्रास, दादा विश्वरतन, सभी। हम कहते हैं बाबा की युगल, मम्मा की माता माँ, सबसे मिलने का, उनसे बातचीत करने का, उनसे रूढ़िहान करने का, उनसे उनके साथ मिलकर के सेवा करने का भी मौका मिला है। हम बताएं आपको, साथ साथ रहे तो आप भी ऐसे स्थान पर योग भट्टी करने के लिए आए हैं। आशा है कि तीन चार दिन, कितने दिन, तीन दिन तो हो गए शायद, तो काफी विकर्म विनाश हो गए होंगे और कर्मातीत अवस्था के समीप अब पहुंचते जा रहे हैं, बाबा को फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमें भी सौभाग्य मिलता है कि वैसे पंजाब में जाने का मौका नहीं मिलता, बहुत समय पंजाब छोड़ा था पटियाला को, कहीं सेवा केंद्र पर जाने का मौका कम मिलता है। लेकिन आप सभी को इकट्ठे यहां मिल रहे हैं, बठिंडा भी है और भी सब सेवा केंद्र हैं, उनके मुख्य मुख्य भाई बहनों से मिलकर के, उनसे रूढ़िहान करके, हमें भी बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी हो रही है। तो हम बताएं, हमें जब इस ज्ञान में आए तो कभी ये नहीं सोचा था कि हमको कभी अनुभव सुनाना पड़ेगा, कभी नहीं। ये हम सोचते थे बाबा मम्मा हैं बस, अब जब ये स्थापना विनाश सामने खड़ा है, उस वक्त भी ऐसा लगता था कि विनाश सामने खड़ा है, सिर पर खड़ा है, बाबा कहते थे, और विनाश होगा, हम सब बाबा मम्मा के साथ उड़ करके जाएंगे, और साथ जैसे नहीं वो गीता में मच्छरों माफिक सब जा रहे हैं, हम सभी उड़ करके जाएंगे, पीछे सुनाने वाला सुनने वाला कौन होगा? कभी किसी को भी ख्याल नहीं आया था इतना लंबा चलेगा। हम बताएं क्लियर भाई, हम 1957 में ज्ञान में आया, उससे पहले बहुत भक्ति की थी, थोड़ा पास भी सुना दें। बचपन में 6 साल की उम्र में भी वो ना ध्रुव प्रहलाद की कथा सुनते थे, तो एक टांग पर खड़े होकर के भक्ति भी की मंदिरों में, ऐसा लगती याद है मुझे। और काफी आस्था थी इन तीर्थों में, सब चीजों में। मुझे लौकिक माता पिता, लौकिक पिताजी ने सारी 10 साल की उम्र में ही भागवत पुराण, रामायण, महाभारत, जितने किस्से कहानियां जो हम अब कहते हैं, उस वक्त तो बड़े मानते थे कि यही सब हैं, भगवान है, सब हमने सुन लिए थे, सब अंदर में भर गए थे वो तो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इससे रुचि निकलती गई, क्योंकि एक इंस्टांस ऐसा हुआ, हमें डर था हमारी भागवत में या किसी में लिखा हुआ है कि अगर कोई तुम शरीर छोड़ दोगे, अगर जनेऊ डाला हुआ नहीं है तो नर्क में जाओगे, इसलिए पहले जनेऊ डाल देना चाहिए, मरे तो नर्क में ना जाए। तो मैं और मैं माता जी को और छोटे भाई को हरिद्वार में जनेऊ डालने के लिए स्पेशल गए, डर था। तो वहां जब देखा पंडों को, उनका जीवन देखा, उनकी बातचीत सुनी, तो बड़ा वो हो गया कि क्या ऐसी गंगा पे रहने वाले लोग भी ऐसे हैं। तो धीरे धीरे इससे भी वैराग आने लगा कि ये किसी जो धर्म के ठेकेदार हैं ये ठीक नहीं है। पढ़ाई भी पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते तो हमारे लोग एक माता पिता चाहते थे इंजीनियर बनने, हमारा लड़का, हमारे एक और भाई हैं लक्ष्मण जी हमारे बड़े भाई, वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान बना तो नहीं बन सके। तो हम इंजीनियरिंग में पटियाला में थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आप सबको जानते होंगे, पहला सेशन हमारा था, हमने वहां इंजीनियरिंग में एडमिशन ली, टॉप स्टूडेंट थे हम, और हॉस्टल में रहते थे, लेकिन जो उसका जीवन था ना इतना बढ़िया नहीं था। आरएसएस में जाते थे हम वैसे, वहां के स्वयं सेवक थे, और जीवन थोड़ा बिगड़ रहा था, अशांति, क्योंकि भक्ति भी छूट गई थी, फिर भी भक्ति कुछ ना कुछ तो फल देती है, बाबा कहते हैं ना करने से तो भक्ति अच्छी है। तो कुछ समथिंग मिसिंग, ऐसा लगता था कुछ मिस है जीवन में, कुछ होना चाहिए, कुछ गायब है, कुछ खला आ गया, कोई वैक्यूम आ गया है, हमें कुछ और कुछ मिलना चाहिए। भले वहां कुछ सब ठीक था, क्यूबिकल रूम थे, सब प्रकार से खाना पीना सब, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, अच्छे थे, लेकिन कुछ मिस कर रहा है ऐसा फीलिंग आती थी। तो हमारे साथ एक, हमारे कमरे के साथ दूसरा कमरा था, आप जानते हैं ओम प्रकाश जी, वो अम्बाला से ज्ञान सुन के आए थे, अम्बाला भी हरियाणा में ही है, वो भी सुन के आए थे, और हमारे कमरे के साथ उनका कमरा था, वो देखते थे, हम उनको देखते थे, सदा शांत, ना किससे बोलना, ना कॉमन रूम में आना, ना खाने पर देखना उसको, ना वो किसे गपशप लगाना, अपनी मस्ती में मस्त। हम कहते ये कैसा व्यक्ति है, ना किसे कोई बात चीत भी नहीं, हमेशा साइलेंस में, शांति में। हम उसको देख करके आश्चर्य खाते थे, कोई व्हाट इज हैप्पी, क्या चीज है। हम उसको दरवाजा खटखटाएंगे तो 5 मिनट के बाद दरवाजा खोलता था, भाई तुम्हें अंदर क्या रखा हुआ खजाना जो आप दरवाजा ही नहीं खोलते, इतना टाइम लगाते हो। मालूम पड़ता था कि वो अपने नीचे मुरलियां, लिटरेचर सब रखता था। वो चाह रहा था कि मैं ऐसे किसी जगह किसी को सुनाऊं जो नरम, बाबा कहते बिच्छू डांग मारता वहीं पर जहां नरम जगह हो। ये लोग तो ठीक नहीं है, ये ज्यादा बाह्यमुखी लोग हैं, उल्टे सुलटे बातें करने वाले हैं, ये है पिक्चर देखने वाले हैं, सब कुछ हम करते थे। तो वो देख रहा था मैं भगवान किस सुनाऊं किसको, तो हम उसे बातचीत करना चाहते थे। तो वो जब हम अंदर कमरे में जाएं, वो अपना ठीक ठाक करके मुरली छुपा के सामने फिर वो बात करता था। तो बहुत दिन बात होती रही, उससे थोड़ी मित्रता हुई। तो उसने एक दफा मेरे कमरे में आया और वो उसने कहा माचिस चाहिए, अगरबत्ती चलानी है, ऐसा मैं कर लो। देखा मेरे पास एक पुस्तक थी, वो होती है ना गोरखपुर की छोटी सी गुटका गीता होती है, वो थी। तो उसने वो देख ली, बस उसने कहा ये धार्मिक आदमी अवश्य है। हमने कभी पढ़ी नहीं थी, हमें तो वो पुरस्कार मिली थी जब हम मैट्रिक में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए थे। उस पुस्तक को देखते ही उसने कहा ये आदमी धार्मिक है, इसको ज्ञान सुनाना चाहिए। फिर शुरू हो गया ज्ञान सुनाना, हमारे से डिस्कशन शुरू होगी कि आप आत्मा है, पहला लेसन शुरू किया। बहुत दिन तक हम तो आत्मा नहीं है, आप दिखाओ हमें, प्रूफ करो कैसे मैं आत्मा हूं। आप प्रूफ को दिखा तो सकता नहीं, आत्मा तो एक, हम ऐसा देखते भी, हम उसको पहले सपोज करते हैं, पहले इमेजिन करते हैं, फिर अनुभव करते हैं। चलता रहा एक दो दिन, वो क्या आत्मा है, मैं को आत्मा नहीं, चलते रहे, बात होती रही, तो डिस्कशन होती रही इस पर, बस कई दिन तक ऐसे चलता रहा। आखिर उसने एक दिन कहा भाई आप ये मान लो कि आप आत्मा है। अंदर से तो मैं मानता था क्योंकि सारी पढ़ा हुआ था, किताबें बजा था, आत्मा तो है ही, हिंदू धर्म में आत्मा और शरीर दो चीज मानते तो है ही। तो मैंने कहा ठीक है मैं मानता हूं आज मैं आत्मा हूं। अब ये इतना मेरा कहना था मुख से, यही कहा कि मैं आत्मा हूं, इतना बोला और हूं, उसी वक्त से वो अनुभूति होनी चालू होगी, वो यानी एक्सपीरियंस होना, अनुभव होना शुरू हो गया, शरीर से न्यारापन। एक ही शब्द से उसने कहा आप आज मान जो, मैंने कहा मानता हूं। उससे क्या एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया, अनुभूति होनी शुरू होगी अपने को, भाई आत्मा। पहले हम ऐसे नहीं बिंदु मानते थे, पहले वो अंगुष्ठ सदृश बाबा कहते थे। अभी शुरू शुरू में बहुत कम सेंटर से, बहुत कम स्टूडेंट से, बहुत कम थे। बट आप देखिए, आपके पंजाब में अमृतसर, हरगोबिंदपुर, अम्बाला और पटियाला, हमने पटियाला खुला, जलंधर भी नहीं था, और कोई सेंटर थे नहीं, ना कोई सेंटर, भाई ये 2-3-4 सेंटर्स थे तब हम पटियाला में से निकले थे। तो बठिंडा भी नहीं था, हमारे पड़ोस में था पटियाला से उधर पास ही, वहां संगरूर कुछ सेंटर नहीं थे। तो कहा अभी ज्ञान भी जो है वो रिवील हो रहा था, सर्विस तो बहुत थोड़ी थी। तो हमने कहा ठीक है हम आत्मा, इसको कहते ही बाबा ने जैसे बुद्धि को पकड़ लिया, मन को पकड़ लिया, और बहुत सबको जिसको भी देखे ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा, लिखना शुरू कर दिया आई एम सोल नॉट बॉडी। जो जगह मिले, क्योंकि देह अभिमान था ना बहुत, उस देह अभिमान को तोड़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बहुत लिखा। जो भी जगह मिलती थी आई एम सोल नॉट बॉडी, आई एम सोल नॉट बॉडी लिखता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। तो बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया, बहुत मजा हुआ। मैंने कहा ये तो बहुत कमाल की चीज है, ये तो یعنی باپ یہ تو کرپا بابا کی تھی دیکھا جائے تو, جس نے اس نے ایک دم پکڑ لیا بابا نے, کیونکہ وہ ہمارے اوم پرکاش بھائی کو وہ جب 6 ماس ہوئے تھے گیان میں آئے ہوئے, وہ بہت ویراگ تھا کہ کیا پڑھائی کرنی ہے, 4-5 سال انجینئرنگ پڑھیں گے تب تک بناش ہو جائے, معلوم نہیں کیا ہو جائے گا کیسے ہو جائے, ایسے لگتا تھا تو. لیکن وہ اس کی پوری فیملی گیان میں تھی, تو اس کے فادر نے بابا کو لکھا ہم چاہتے ہیں ہمارا لڑکا انجینئر بنے اور آپ کے گیان کے کارن دیکھو یہ پڑھتا نہیں ہے انجینئرنگ میں. تو بابا نے خاص لکھا لیٹر, بچے تم جاؤ, تمہارے لیے وہاں بہت انتظار ہو رہی ہے, کئی لوگ بہت لوگ بہت بھائی بہن جو ہیں آپ کی گیان سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایسے. تو آیا تو پہلے پہلے ہم نکلے, تو اس نے دیکھا, تو جس سے کیا ہوا انبھوتی, تو میں نے اس کو کہا بھی اب جو آپ کے پاس گیان ہے تو بہت ونڈرفل چیز ہے, سارا مجھے گیان سناؤ. دو دن میں ہم نے لیکچر وغیرہ کلاس مس کر کے پورا ان سے سنا, آتما پرماتما سرشٹی چکر رام کون ہے, راون کون ہے, کرشن کا ہے, کنس کا ہے, ساری بھاگوت جو ہم سنتے تھے پڑھتے تھے, اتنی ونڈرفل باتیں لگی کمال کی, شیو شنکر علیحدہ ہے, یہ ہے شیو پرماتما ہے, ہم آج تک سن رہے تھا, اتنا ونڈرفل نالج لگا کمال ہو گیا, بدھی سنتوشت ہوگی اور خوشی آ گئی, بہت ہلکا پن آ گیا, جیسے کہ ایک خزانہ مل گیا ہم کو. اب ہم کو بہت سمپل باتیں لگتی ہیں, دنیا والوں سے پوچھو ہر بات میں ہم کہتے ہیں پرماتما سرویاپی نہیں, وہ کہتے ہیں سرویاپی ہے, گیتا کا بھگوان شری کرشن نہیں, وہ کہتے ہیں گیتا کا, کتنی متضاد باتیں ہیں, کتنی ونڈرفل باتیں ہیں. بابا کہتے ہیں ایک ایک گیان رتن لاکھوں روپے کا تو ہے, لوگ دنیا اندھیرے میں پڑی ہے, دنیا کہتی ہے 84 لاکھ دنیا, بابا کہتا ہے نہیں ہم تو 84 جنم لیتے ہیں, دنیا کہتی ہے کتنے لاکھوں ورش نہیں کروڑوں ورش کا یہ سب وہ ہے چکر ہے, بابا کہتا ہے کیول 5000 ورش کا اور ست یوگ تریتا دواپر کلیوگ چار یوگ ختم. کتنا سمپل بابا بتا دیتے ہیں, اتنا گیان سن کر کے بدھی میں بہت بہت خوشی ہوئی, من بڑا خوش ہو گیا, میں نے کمال ہے ایسا سندر گیان تو کہیں ملا نہیں, ایسا سندر گیان ہے پریکٹیکیبل ہے ریشنل ہے, کوئی بھکتی مار کا بھکتی کا انش نہیں ہے, یعنی اور سائنٹیفک ہے ریزنیبل ہے, ایسا نہیں کہ ایسی ہے کوئی ایسے سمپل ہے بہت ہی نہیں, اور بدھی گمیہ گیان ہے. ایسے گیان کو سن کر کے بہت بہت خوشی ہوئی, یعنی بہت ہلکی بدھی ہوگی اور کنٹینٹمنٹ آ گئی, جو ہم کہتے خلا تھی کچھ وہ ویکیوم تھا وہ ایک ویکیوم بھر گیا. تو ہم نے کہا بھائی ایسا آپ کو گیان ملا کہاں سے, ابھی 4-5 دن ہوئے تھے. اس نے کہا یہ تو بتایا, اس وقت تو ترمورتی جہار بھی نہیں چھپے تھے ابھی تک, وہ جاپان سے بعد میں چھپ کے آئے گئے, بھئی یہ برہما ہے سرس, پہلے سنایا تو تھا زبانی, تو پھر وہ بتایا کہ ابھی بابا مما آپ کے ہمارے بابا مما جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں, ہم کا ملنا چاہیے ان سے. بابا کہتے ہیں نا جس کو نشچے بدھی ہو جائے تو کیا کرے گا, بھاگے گا نا بابا مما سے ملنے کے لیے جس کے دوارا گیان دیا جا رہا ہے. ہم بھی 5-7 دن گیان سننے کے بعد بھاگے بابا سے ملنے, آگے وہاں رجوری گارڈن دلی میں آئے ہوئے تھے, وہاں ملنے کے لیے چل پہنچ گئے اور رات میں 11 بجے پہنچے, ہمیں پتا بھی نہیں دلی بہت فرسٹ ٹائم ہم جا رہے تھے. تو وہاں جس بلڈنگ میں بابا رہے ہوئے تھے آدی دیو آدی دیوی اتنے ہمارے مہان, وہاں کا واتاورن ہی ایک بڑا کھینچنے والا تھا. اس بھائی نے کسی نے مجھے درشٹی دے کے سلا دیا, جیسے کہ ہم اڑ گئے جا کے, وہ کہاں اڑ کے چلے گئے. تو سویرے بابا مما سے ملنا ہوا, دیکھیے کیا پہلے ریئیکشن میرا کیا تھا, بابا مما کی پرسنالٹی اتنی زبردست تھی, آج تک میں نے ہم فارن بھی گئے ہیں کہاں بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملے ہیں بہت کچھ ہوا ہے, کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں دیکھنے میں آئی, ایک دم یعنی چمکتے ہوئے یعنی دیویہ مورتی. ان کو دیکھ کر کے پہلا یہ نشچے ہوا کہ یہی ہمارے واسطوک ماتا پتا ہیں, فرسٹ سے دیکھتے ہی ملتے ہی, ابھی ملے تو بعد میں پہلے دیکھا ان کا, بیٹھے تھے گدی پر بابا مما. تو اب ہمیں کسی نے کہا نہیں تھا بابا مما سے ملنا کیسے ہوتا ہے, پتہ کیسے ملتے تھے بابا مما سے, آپ نے سنا ہوگا مما اور بابا کی ہم سب گود میں جاتے تھے, دیکھو مما کتنی ایج تھی اس وقت, ینگ ایج تھی, بابا تو بزرگ تھے, چلو بزرگ کی گود میں تو سب لوگ جاتے ہی ہیں, ہم بابا دیکھو مما کی گود میں چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے گاؤں کا ہو شہر کا ہو, وہ بھی مما کی گود میں جاتا تھا. اب بتائیے اب کتنا یعنی ان کا, اور بابا کی گود میں بھی ایسے, چاہے کوئی بھی ہو بابا مما ایسے نہیں کہ ہاتھ جوڑیں گے یا پھول چڑھائیں گے یا کچھ کوئی कोई रिचुअल था ही नहीं बिल्कुल, जो हम जिसके हम खिलाफ थे रिचुअल भक्ति मार्ग के, कोई रिचुअल नहीं। जैसे ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि अपने माता पिता की गोद में गए हुए हैं। तो आप बताइए कितना उनकी कितनी अशरीरी अवस्था है, देह से न्यारी देही अभिमानी अवस्था है। कोई भी है मम्मा की गोद में जाएंगे, बाबा की गोद में जाएंगे, बाबा मम्मा थप थपाएंगे, टोली खिलाएंगे, प्यार करेंगे और कुछ वर्षन भी बोलेंगे। तो हमारे प्रति जो पहले पहले बाबा ने महावाक्य उच्चारण की, तो मैं बताता हूं उस वक्त आप कहेंगे बाबा को जल्दी थी स्थापना की, जल्दी स्थापना हो तो बाबा के उस जैसे पहले हमारी दादियां आई सन 37-36 में दादियां आई, बाबा क्या कहते थे, अगली दिवाली नहीं आने वाली है। बाबा ने ये कहा था, विनाश हुआ कि हुआ तब भी ऐसा लगता था, ऐसा नहीं कि बाबा को वो बनाकर बोल रहे हैं, बनावटी बोल रहे हैं, ऐसा लगता भी था। फर्स्ट बार सेकंड बार बार होने वाली थी, एटॉमिक अटॉम बनने बन रहे थे और कोई ना कोई झगड़ा बेचैनी तो दुनिया में शुरू से रही। हम जब है तभी ऐसे था, सन 57 में आए तो 1857 में वो झगड़ा हुआ था हिंदुस्तान में, वो आजादी हुई थी, अब 1957 सौ साल पूरे फिर कुछ होगा, नहर स्वेज की और मिस्र की लड़ाई झगड़ा होता रहता था, ऑन दी ब्रिंक ऑफ वार। जब भी देखो जो दुनिया है वो ऑन दी वो वार के नजदीक ही खड़ी है, ऐसा लगता था। तो हमने कहा, बाबा ने फिर क्या कहा, बच्चे 5 साल पढ़े हैं, ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। पहले पहला माँ वाक्य मेरे पति का, बच्चे ये जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आएगी, काम नहीं आएगा, आने वाली नहीं है, तो कुछ करो कुछ और कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, हमें भी वैराग आ गया था 4-5 दिन ज्ञान सुनने के बाद। तो हमने कहा ठीक है, बाबा के महावाक्य हैं। तो हम जब बाबा से मिलके गए, तो बाबा मामा से मिलके गए अपने वापस, तो अनुभव सुना जैसे अभी आपको सुना रहे हैं, वहां भी सुना, बाबा से मिले मम्मा से मिले ये के। उस बीच में एक बात और रही, क्लास के बाद बाबा मम्मा चलते थे घूमने के लिए। यहां भी आप देखेंगे जब क्लास पूरी होती थी, चैम्बर होता था बाबा के कमरे में, फिर वहां से बाबा मम्मा सब चलते थे नक्की लेके आगे तक जा घूम के आते थे। हम सब पीछे पीछे होते थे और बाबा आगे आगे, तो मम्मा आगे आगे होती थी और पीछे मुड़ के बाबा पूछते थे, बच्चे किसके साथ चल रहे हो, ऐसे बाबा पूछते थे। तो वहां भी हम जब रजौरी गार्डन में थे तो हम जा रहे थे, तो मैंने मम्मा पीछे थी और बाबा मम्मा से पूछा, मम्मा ये सारा चलता कैसे है, डायरेक्ट प्रश्न किया, एक ब्राह्मणी साथ थी, ये सारा आप चाय पिला रहे हैं खाना खिला, मैं अंदर सोचा खाना खाया जा रहा है, भोग लग रहा है, भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हाउ इज गोइंग ऑन, कोई भंडारी नहीं है वहां पर, कोई किसी कुछ कहता नहीं है, और संस्थाओं में जाओ तो कुछ देना पड़ता है, करना पड़ता है, यहां तो कोई इशारा करने वाला भी नहीं था उस वक्त की बात है। तो मम्मा ने क्या कहा होगा बताओ, क्या मम्मा ने कहा होगा, मम्मा ने बोला कुछ नहीं, मुस्कुराई। हमेशा मम्मा जो है किसी भी बात को सिखाना हो बताना हो पहले मुस्कुरा देंगे, और मम्मा ने उंगली ऊपर कर दी कि ऊपर से जैसे ऊपर से आता। मैं जब हम तो थोड़े छोटे बच्चे थे, अभी 5-7 दिन के बच्चे तो क्या समझेंगे इन बात को, भाई जब कोई यहां भंडारी रखी नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, क्या इशारा करने वाला नहीं, वाट इज। तो मैंने कहा ठीक हो सकता है ऐसे को भी हो भी, कैसे करते हैं ये, हमारी ध्यानी दादी थी वहां पर, आप सब जानते हो पंजाब की बंबाला की, हमारे पटियाला में आती थी वो भोग लगाने के लिए उसमें, तो वो ऐसे हाथ करेंगे भोग दिखाएंगे सब करते थे, फिर मम्मी का भाई कुछ है यहाँ है सिस्टम ही नहीं है तो कुछ हो सकता है ऐसा हो। इस प्रकार से चलते चलते हम वापस आए पटियाला में, तो बाबा को निश्चय पक्का हो चुका था कि भगवान आया है, गीता का भगवान, महाभारत सामने है, यादव कौरव पांडव सब खड़े हैं, ये विनाश को होंगे और नया योग आएगा, सब निश्चय हो गया। अब बताइए स्वयं भगवान आया है, जिसको निश्चय हो जाए वो क्या करेगा, सोचो, आप भी सभी निश्चय बुद्धि हैं, जिसको ये पक्का निश्चय हो जाए स्वयं भगवान का कार्य चल रहा है तो वो क्या करेगा, बताइए। हमें ये निश्चय हुआ तो क्या किया हमने, हमने कहा ये निश्चय किया कि जो बाप का कार्य है वही हम करेंगे, जो बाप का कार्य सो हम बच्चों का कार्य। ये उस वक्त 1957 या अभी थोड़ा टाइम और बीत गया होगा, ये निश्चय किया कि हम वही कार्य करेंगे, जो पाप का कार्य बाप का कार्य सो हमारा कार्य, ये पक्का निश्चय कर लिया। एक लेटर लिखा बाबा को इंग्लिश में, शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को एक लेटर लिखा इंग्लिश में लिखा, और बाबा का जवाब भी इंग्लिश में आया। देखिए क्या लिखा मैंने बाबा को, मैंने कहा बाबा आई डोंट, हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे ना सिविल, अभी पहले तीन साल दो साल एक ही इकट्ठा कोर्स होता है, बाबा आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड डिजाइन बिल्डिंग, बट आई वांट टू बी कॉर्नर स्टोन, वन ऑफ द स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस विच यू आर इरेक्टिंग। सतयुग की जो आप बहुत बड़ा महल बना रहे हैं, हम उसमें एक, हम भी एक पत्थर बनना चाहते हैं। फिर लिखा बाबा आई डोंट वांट टू डिजाइन हाईवेज एंड रोड्स, बट आई वांट टू रन ऑन द हाईवे लीडिंग टू परम धाम एंड देन गोइंग टू गोल्डन एज, वो ऐसा हाईवे हम बनाना चाहते हैं। देन आई रोड, देन आई डोंट वांट टू डिजाइन मशीनरी, बट आई वांट टू बी पार्ट ऑफ ए किंग एंड क्वीन मशीनरी विच यू आर इन्वेंटेड। जो आपने बाबा मुरली में बहुत दफा कहते हैं ना, ये कौन सी है, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, ये किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी है, तो कौन सी, हम सब किंग एंड क्वीन बनाने की मशीनरी है। तो बाबा को लिखा, बाबा को बहुत अच्छा लगा, फौरन दो दिन में जवाब आया। तो बाबा ने डायरेक्शन दिया, फिर देखा बच्चे को बहुत बड़ा आ गया, जो मैंने कहा था तो उसको प्रैक्टिकल करना चाहता है। तो बाबा ने कहा नो, बाबा ने कहा बी पेशेंट, बाबा का जवाब था, गिव दिस नॉलेज टू यूर को इंजीनियर्स एंड टू यूर लोकिक फैमिली, ये बाबा के डायरेक्शन थे। तो क्या हम और भले कई बातें ना बाबा की मानी हो, क्योंकि बाबा कहता आठ घंटे योग करो, ऐसे करो, वो दैवी गुण धारण करो, तो हम बच्चों के लिए होता है, परंतु जो बाबा लिखते थे, जो डायरेक्शन देते थे स्थूल, कम से कम उसको तो हम अवश्य फॉलो करते थे जो हम कर सकते थे। तो हमने किया, तो पहले पहले हमने इंजीनियर्स को, अपने दोस्तों को ज्ञान देना शुरू किया। हमारा कमरा था वहां हॉस्टल में, वहां दरी बिछाई, लाल बत्ती जाई, उस दिन में शिव बाबा का ये कैसकट नहीं होता था, बट और ग्रामोफोन लाए, उन दिनों में टेप तो थे नहीं, ग्रामोफोन होता चाबी वाले, वो थाली होती है, वो सुई लगाते हैं, वो रिकॉर्ड लाए, बैठ के रोज योग लगाते, सुबह शाम बैठो जी चार बजे उठो योग करो। मैं था, ओम प्रकाश और दो तीन चार लोग हो गए, अपनी अब हॉस्टल में हमारी क्लास शुरू होगी, सुबह सुबह उठे योग लगाए, वो रिकॉर्ड बजाए। तो हमारे वार्डन गए, आप लोगों को क्या हो गया, जो होता है वो हॉस्टल का, ये क्या चक्कर है तुम्हारा, वो हम उनको बता भी ना सके क्योंकि वो तो नाराज हो जाएंगे। हमने फिर क्या कहा, छोड़ो हॉस्टल, हॉस्टल छोड़ दिया हमने। ओम प्रकाश भाई को, जो हमारे दोस्त थे, उनको तो बंधन थे घर से, हमें कोई बंधन था नहीं, सब हमारे, हम वो गांव में रहने वाले, उनको उनको नहीं ख्याल था भैया हॉस्टल में रहते हैं, बह रहता है कुछ है। हॉस्टल छोड़ करके हम अपना कमरा, एक मकान लिया छोटा सा, उसमें हॉल बनाया, उसमें वो किया, सोफा लगाया, उसमें दरी बिछाई, गीता पाठशाला खोलने के लिए। तो होगी, हम शुरू कर दिया ज्ञान देना करना शुरू कर। एक सरस्वती माता थी हमारे पास, वहां से अम्बाला से आ गई, हमें योग कराती थी, हम दिन रात इसी काम में लगे रहते थे। नो इंटरेस्ट इन स्टडीज, जो बाबा ने कहा ये काम आने वाला है तो क्या स्टडी करनी, सच कहते हैं आपको। तो हमने फिर भी जाते थे, लेक्चर अटेंड करते थे, आ जाते थे विद डिस इंटरेस्ट, आई वॉज स्टडिंग विद डिस इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं था, चलते रहे। और बहुतों को ज्ञान दिया वहां स्टूडेंट्स को, हमारे उन दिनों में त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती थी, त्रिमूर्ति होती है ना ये, अभी ज्ञान अमृत है ना, उसमें त्रिमूर्ति थी मोटी सी, उसमें पहला वो टाइटल होते थे, इधर वो रशिया, इधर अमेरिका, वो आपस में लड़ाई हो, इस प्रकार के टाइटल थे। बाबा आलमाइटी अथॉरिटी थे, वो जो कहते थे जगदीश जी वही लिखते थे। अब वो मैगजीन ऐसी होती थी, अब उसका पेज खोलो ना, पहले पहले पेज होगा परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, दूसरा खोलोगे गीता का अमर शिक्षण नहीं, तीसरा खोलो पतित पावनी गंगा नहीं, और चौथा खोलोगे 84 लाख, इन्हीं जितना ज्ञान था सारा डायरेक्ट बाबा के, जो वो ज्ञान होता था। आजकल तो ज्ञान अनुभव होते हैं, योग पर होता है, ये होता है, वो होता है, वहां उस वक्त ये नहीं था, बाबा का डायरेक्ट ज्ञान होता था। तो हम वो जाते थे बस में, जब हम पहले पिक्चर देखने जाते थे ना अम्बाला, पहली पहली पिक्चर है अम्बाला जाएंगे, हम उसी बस में बैठ करके सारे 5, 10, 20 मैगजीन बांट देते थे अपने स्टूडेंट्स को, तो वो पढ़ते थे, फिर हम नीचे उतर के सबसे पूछते थे, वापस लेते थे, क्या पढ़ा आपने, कहते ये आपका ज्ञान कैसा है, परमात्मा सर्वव्यापी, दुनिया सारी कहते सर्वव्यापी, नहीं आप कहते नहीं है, तो मैं तुम मेरे से डिस्कशन करो, बड़ा जोश था, मोमेंटम था, मैं कहता बताओ क्या सर्वव्यापी कैसे है, ये एक दूसरे को मार रहे हैं क्या, परमात्मा परमात्मा जैसे हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो कहते बात तो ठीक है, मान जाते थे, वो इतना फोर्स होता था कि वो कहते बात तो तुम्हारी ठीक है, ये ऐसी बात तो नहीं है। इसी प्रकार से हमारी स्टूडेंट्स की क्लास होगी, जो बाबा ने कहा अपने को इंजीनियर्स को ज्ञान दो, तो हमने देना शुरू कर दिया। और वो आने लगे स्टूडेंट्स, कई आते हैं, बोले अभी चले नहीं चले बात अलग है, लेकिन बाबा मामा से मिले, सब किया। फिर बाबा ने कहा था तुम जाओ वहां अपने लौकिक परिवार को दो, समर वेकेशन था, हम लौकिक घर में गए तो सब ज्ञान सुनाया, उनने सुना, उनने कहा ठीक है पवित्रता क्या है, यही नहाना धोना खाना पीना ठीक होगा, बाकी थोड़ा पवित्रता मैंने ब्रह्मचर्य का पालन, वो उनने ये समझा। जब ज्ञान सुनाया उनको अच्छा लगा, हमारे माता जी पहले ज्ञान में आए, फिर पिताजी कहे भाई मैं तो ज्ञान तो आपका ठीक है, हमने उनको लिख के दे दिया वो बोला वो कमेंट्री जो है हमारी उसके आत्मा, मैं आत्मा हूं बाबा का बच्चा हूं, ये जो कमेंट्री लिख के दी उर्दू में, वो पढ़ते जाएं और खेत में जाएं सुन अपना रिवाइज करते जाएं, कहता ज्ञान तो आपका अच्छा है, ले वो भक्ति उन्होंने बहुत की थी। वो उन्होंने एक कंडीशन रखती कि हमारे लौकिक पिता ने कि अगर आपका बाबा मुझे कुछ साक्षात्कार करा दे तब मैं मानूंगा कि ये आपका ठीक है। तो मैंने कहा अब तक मुझे नहीं कोई साक्षात्कार हुआ, और बाबा साक्षात्कार को तो कंडम करते थे कि क्या साक्षात्कार होना है, साक्षात्कार में क्या रखा है, बाबा ज्यादा साक्षात्कार में इंटरेस्ट लेते नहीं थे। मैंने कहा मैं कैसे कहा, आप तो अभी बाबा से नहीं मिले, मम्मा से मिले, कभी सेंटर पर नहीं गए, तो मैं कैसे आपको साक्षात्कार हो सकता है। फिर भी हमने क्या किया, वो तो एक नियम होता है, हर गुरुवार को वहां बैठ के भोग लगाते थे, हम बैठे थे भोग रखा, और सारी जो गांव के दो चार पांच सात दस माताएं भाई थे वो भोग लगाने लगे तो उठ करके खड़े हो गए, वो देखो उसकी क्या बाबा कैसे पकड़ता है हमारी पूरी फैमिली को, उठ करके खड़े हो करके वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी इधर जाए कभी इधर जाए कभी इधर जाए, वो पकड़ने की कोशिश करें उनके हाथ में ना है। तो अच्छा, तो हम बड़े खुश हो रहे थे भी कुछ हो रहा है, उठ के खड़े नाच रहे हैं, कुछ बात तो है, हमें खुशी हो रही थी, देखो हमारा बाबा यहां किसी को अभी दादी भी नहीं दीदी भी नहीं कोई भी नहीं, और हमारा लौकिक फादर बड़ा, मैं आई वॉज हैप्पी भी कुछ हो रहा है, यहां तो कोई जादू जादू टोना है नहीं कुछ। तो फिर वो कुछ देर के बाद नीचे आए, बड़े उदास थे। मैंने कहा बोलो जी क्या हुआ, कहते मैं ऊपर कहीं गया, बहुत सुंदर छोटा सा बच्चा कृष्ण मेरे सामने आया रियलिटी, और मैं उसको पकड़ता हूं तो यहां पकड़ दो तो वहां चला जाता है, यहां पकड़ दो तो मैं उस छोटे बच्चे को पकड़ नहीं सका। मैंने कहा फिर कहते आपके बाबा जो सफेद पोश हैं वो सामने आए, उन्होंने भी कंडीशन रखी बच्चे तुम निश्चय बुद्धि बनोगे, ज्ञान को मानोगे और जो नियमों को धारण करोगे तब श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा, उसने बाबा ने यह कह दिया। मैंने कहा ठीक है, तो इतनी एज तो काफी थी 50 से ऊपर थे, सब वो नियम धारणा बारणा सब उनने शुरू कर दिया, नहाना धोना जो होता है हमारा बाबा कहते हैं सब ब्राह्मण जो है उनका क्या है शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है बात, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात थी, चलो लोग कहते हैं रेखा देख लें तब भी वो मानते कि हमने भगवान को देख लिया, उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, वो श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करते थे, सारा सारे रात वो हर शाम को जाएंगे महलों में वो भागवत पुराण पढ़ाएंगे, हकीम थे और बड़े वो थे, उस पूरा भागवत की कथा सुना के आते थे, मैं भी सा जाता था छोटा बच्चा तो बड़ा, और सारा बैठ पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे भागवत पुराण गीता ऐसे जो भी होती किताबें। तो तब उसने कहा ठीक है, उन्होंने शुरू कर दिया, अगले हफ्ते फिर हमने भोग लगाया, फिर वो ध्यान में चले गए, ऐसे ध्यान में गए, उनको श्री कृष्ण मिला, गोद में बिठाया, बड़े आंसू बहाए, उनकी मनोकामना बिल्कुल पूरी होगी। उसको देख करके हमारा सारा लौकिक परिवार, माता जी पिता जी पड़ोसी अड़ोसी जितने थे वो आश्चर्य है, ये हो क्या रहा है उनको, और वो इतने अच्छे संदेशी बन गए, हम के बाबा से ये पूछ के आओ, वो पूछ के आते थे रियल बिल्कुल एक्चुअल करेक्ट पूछ के आते, कोई लौकिक भी काम पूछे ना भाई हम ये जमीन बेचेगा ना बेचे, एक दफा के बाबा ने मना किया है, फिर गए कुछ समय के बाद हाँ बाबा ने हाँ कहा है, जो हम बात पूछे उनसे तो पूछ के आते थे, तो लोग भी आश्चर्य करेंगे इनका बाबा कैसा है। तो एक उन दिनों में तो बहुत कम लोग थे ना, परिवार भी बहुत कम थे, पूरे परिवार को बाबा ने पकड़ लिया, हमारे लोग के बड़े भाई थे वो बड़े और थे, कितने थे भाभियां थी, जब इस बात को देखा तो बाबा ने मुझे भी बहुत पक्का निश्चय करा दिया, निश्चय तो था ही, लेकिन हम कहते भी ये ध्यान का पार्ट क्या है कैसे है? हम बताएं, साक्षात्कार का पार्ट भी वंडर कमाल का है, इसी साक्षात्कार के पार्ट से इस यज्ञ की स्थापना ने बहुत काम किया है शासन ब्रह्मा का, कैसे किसी अपनी जब बहने या दादियां थी तो और तो कोई काम था नहीं, बहुत बहने साक्षात्कार में जाती थी और वो देख देख के आती थी। आप देखो उस वक्त इतनी अपोजिशन थी सिंध में, अभी बाबा जा रहा है कहीं तो एक देख रहा है वो श्री कृष्ण जा रहा है, दूसरा देख रहा है दादा लेख रहा जा रहा है, ऐसे साक्षात्कार होते थे। तो जिससे स्थापना जो हुई शुरू शुरू में साक्षात्कार का बहुत बड़ा महत्व था, अब भी है। अब भी देखो दादी में बाबा आते हैं तो वो वही है ना, अव्यक्त पार्टी तो है। इस प्रकार से हमारा पूरा परिवार ज्ञान में आ गया तो अच्छा हुआ। तो हम चलते चलते हमारा इंजीनियरिंग हमने पास कर ली जैसे कैसे, कोई विदाउट एनी इंटरेस्ट जाते थे, मिस करेंगे कहाँ लेक्चर्स, हफ्ते के बाद जाए कभी मामा आ रहे हैं, कभी बाबा आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कैसे आ रहा है, लेक्चर तो मिस करते रहते थे। हम जब जाएंगे तो प्रोफेसर बोलेगा एपी मेहता हमारा नाम था, हम यस सर, तो लोग हंसते थे, देखो जी इतने समय के बाद ये आए हैं तो क्या पढ़ाई करेंगे। फिर भी मालूम नहीं कैसे हम पास हो गए, इंजीनियरिंग पास हो गए। और आप जब इंजीनियरिंग पास कर ली, डिग्री ले ली, डिग्री लेने तो नहीं गए, तो फिर हम बाबा सारे ज्ञान में आ गए, हमारे सारे भाई भी आ गए, माता पिता भी आ गए, सब भी आ गए, कोई बंधन था नहीं। तो हम माता पिताजी को लेकर के फिर मधुबन आए। हम बीच में एक बात सुनाता हूं कि जब हम बीच में बार बार मधुबन आते थे, उन दिनों में मधुबन कोई वो नहीं था ज्यादा सेंटर, वो कोई सर्विस का सेंटर नहीं था, बस बाबा मम्मा रहते थे। और बाबा मम्मा भी वास्तव में कभी बॉम्बे, कभी दिल्ली, कभी पंजाब आते रहते थे। तो हम गर्मियों में आते थे, सर्दियों में तो नहीं, बारिश में भी बहुत मुश्किल होता था। तो आप कभी साल में एक दो बार आते होंगे, अब यहां तो कितनी दफा आप आते हैं, बहुत आते आते रहते हैं। उस वक्त ये सिस्टम नहीं था, बहुत कम था। तो हम एक बार मधुबन आए, फर्स्ट टाइम मधुबन आए, जो रजौरी गार्डन में तो मिले बाबा मम्मा से, लेकिन फर्स्ट टाइम आए। उस वक्त देखो क्या, उस वक्त क्या सिस्टम था, यानी क्या यहां पर वो थी, कोई मकान नहीं था। अभी जहां बैठे ये मकान भी नहीं, हिस्ट्री हॉल भी नहीं, ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं, कुछ नहीं था बिल्कुल। एक जो सामने आप देख रहे हैं टीन का छप्पर और बीच में बाबा का है कमरा और ये सब, इतना एरिया था, बाकी सब खाली पड़ा था। और ये भी नहीं था जो आगे बना हुआ है जहां पर ऑफिस वगैरह है, कुछ नहीं, खाली। और बाबा उस वक्त हमने देखा, हम आए थे स्टूडेंट, सेकेंड ईयर नहीं फर्स्ट ईयर होगा हमारा, तो देखा उस वक्त एट दी, उस बाबा की एज 80 साल की थी, 80 ईयर्स एज। और बाबा को देखा कि जो अभी है ना शांति स्तंभ, यहां टेनिस कोर्ट था, घास था, टेनिस कोर्ट था, वहां बाबा बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे एट दी एज ऑफ 80। कितनी है, आप देखिए हेल्थ ठीक थी। और दादा बेचुतन उनको बाल फेंकते थे और बाबा उनको लगाते थे, जैसे बच्चे आजकल गलियों में नहीं बच्चे खेलते इस प्रकार से, और बच्चे हंसते हुए पकड़ते थे, ऐसे करते थे। मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा, देखिए यानी एट दिस एज बाबा इतने फिट हैं कि क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमने बाबा का फोटो लेने की कोशिश की, कैमरा था मेरे पास, बाबा ने खेल बंद किया और मेरे पास है, बच्चे क्या दरकार है, बाबा ने महावा के उच्चारण के, बच्चे मेरा फोटो तो आएगा नहीं, ये कौन बोल रहा है, कौन बोलता है मेरा फोटो नहीं आएगा, दोनों शिव बाबा बोल रहा है, ब्रह्मा बाबा तो आत्मा का तो फोटो होता नहीं है, मेरा फोटो तो आएगा नहीं और ये शरीर किसी काम का नहीं है। बाबा और शब्द बोले, मैं नहीं बोलता वो, ये किसी काम का नहीं है। तो मैंने कहा क्या करना है फोटो लेके, मैं नहीं लेता बाबा, बात तो राइट है। उस वक्त फोटो वगैरह लेने का इतना वो नहीं था, वो रिवाज नहीं था, हमने नहीं लिया फोटो। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे आपका दिल है तो ले लो, फिर हमने ले लिया। मैं इस प्रकार से बाबा क्या चाहते थे, इन शरीरों से पार, इस देह को मत देखो, जो देह में जो आप बाबा क्या अपने किस मन से खेल रहे थे, मैं तुम्हारा साथी भी हूं, कंपेनियन भी हूं, तुम्हारा दोस्त भी हूं। इस प्रकार से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश होकर खिला रहे थे बच्चों को, हंसा रहे थे, बहला रहे थे, वो तो संबंध, ये संबंध की भाषणा दे रहे थे। लेकिन कौन कर रहा है उसको देखिए आप, जब भी बाबा से कोई मिलते थे, चाहे बहने मिले, चाहे भाई मिले, कोई भी मिले, बाबा पूछते थे किससे मिलने आ रहे हो, किससे मिल रहे हो, शरीर से नहीं, इस शरीर में बैठे हुए शिव बाबा से मिल रहे हो। अगर ये बुद्धि में नहीं रहा तो फिर वो ठीक नहीं है, बाबा कहते वो ठीक नहीं। बाबा हमेशा हर बात में शिव बाबा को आगे रखते थे, अपने को पीछे रखते थे, यानी ऐसे था बाबा का व्यवहार। मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा कि देखो बाबा हमको शरीरों से, अपने को शरीर को भी भूलो और किसी शरीर को ना देख करके, यही हमारा पहला लेसन है, आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। इस प्रकार से फिर हम इंजीनियरिंग पास करके आए बाबा के पास, तो बाबा ने तो कहा था, बच्चे मैंने क्या तुम्हें कहा था कि ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, तो कोई दरकार नहीं जाप करने की। बाबा ने स्पष्ट कह दिया, हम निश्चय बुद्धि से, भगवान कह रहा है, बहुत बड़ी बात है, कौन बता रहा है ये? शिव बाबा स्वयं कह रहा है कि बच्चे तुम्हें ये इस सेवा में मददगार बनना है। तो हमको भेज दिया, दिल्ली भेज दिया। हमारे पिताजी तो थोड़ा वो घबरा रहे थे, उन्होंने मम्मा से कहा, देखो मम्मा बाबा दोनों, मम्मा से कहा, मम्मा अगर ये जाप करेगा भी तो क्या दरकार है, पैसा हम नहीं लेंगे, यज्ञ में दे कुछ भी करे। लेकिन बाबा ने, अपनी मम्मा ने कहा, देखो बाबा ने क्या कहा है, बाबा भृगु ऋषि है, वो बच्चे की जन्म पत्री को जानता है, लेकिन जो डायरेक्शन दिए उस बाबा, अपनी मम्मा अपनी डायरेक्शन कभी नहीं देंगी, जो बाबा कहेंगे हाँ जी और सत्य वचन, हुक्मी हुक्म चला रहा, ऐसे मम्मा कहती। तो हम चले गए, तो बाबा ने भेजा, हमें दिल्ली में भेज दिया। तो वहां पर हम गए जगदीश जी के पास रहे, 3-4 साल उनके पास अनुभव लिया। वो भी सोचते थे कि इंजीनियर, बाबा ने इंजीनियर को भेजा है, रीजन क्या है, कारण क्या है? भाई इंजीनियरिंग और लिटरेचर का तो संबंध कुछ है नहीं, इंजीनियरिंग का संबंध तो कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग से या और बातों से है, लेकिन उस समय कोई बिल्डिंग नहीं बनती थी, सब मकान किराए पर होते थे। मैं कहता हूं सिवाय अमृतसर के मकान के, सारे मकान जो थे किराए पर दिए जाते थे, उस वक्त ऐसा था। और हम वहां पर, बाबा ने भेज दिया हमको, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं की, जो जगदीश भाई जी कहते थे हम करते रहे, सीखते रहे, चलते रहे। ऐसे नहीं देह मान हम इंजीनियर हैं तो हम ये काम नहीं करेंगे, नहीं, चाहे सिर पे सामान उठाना पड़े वो भी उठाना पड़ेगा, सब चीज। ये नहीं मैं डिग्री होल्डर हूं, ये हम कुछ नहीं। मुझे याद है एक दफा हम प्रेस में जाते थे तो उठा करके, उनका 3 मंजिला मकान था, फिसल गए हम। तो क्या कहा जगदीश भाई ने, एक उन्होंने शेर पढ़ा, उर्दू में बताता हूं, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये देखिए हमारे बड़े भाई मुझे कह रहे हैं, अभी शुरू है, अभी तो अभी अभी देखिए क्या होता है। हम भी हंस रहे थे, हमें तो निश्चय काम किसका है, भगवान का कार्य, ये स्थापना का कार्य हमने करना है। तो इस प्रकार से चलते रहे, सीखते रहे, चलते रहे, बाबा से मिलते रहे, करते रहे। बाबा ने हर प्रकार से बच्चों को अपने संबंधों की भावना दी। मैं एक बात सुनाता हूं, देखो हम अब बाबा को याद करते हैं ना, हम तो अपना पुरुषार्थ बताते हैं, कुछ सूखा सूखा याद नहीं करते भाई, बिंदु बन बिंदु को याद करो ठीक है, वो भी करते हैं, लेकिन जो बाबा के संबंधों से याद करते हैं उसमें बड़ी रमणीकता आती है। बाबा हमारा, बाबा तो है ही, मदर माँ भी है, सखा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, स्वामी भी है, साजन भी है, सर्जन भी है, बच्चा भी है, माशूक भी है, इस सारे 9 संबंधों से मैं याद करने की कोशिश करता हूं। इसको ऐसे याद करने से रमणीकता बहुत आती है। मैं बताऊं आपको, बाबा हमारी माँ कैसे है। हम जब बाबा आते थे वहां पर दिल्ली में, बहुत दफा आते थे, तो एक बार हम तो रहते थे जगदीश भाई जी के साथ, दादी गुलदार थी उनके साथ रहते थे, बहुत सुबह से शाम तक बिजी होते थे। तो ये जाते थे दिल्ली कैंट में, बाबा मेजर कोठी में आते, हमें कभी ले जाए कभी नहीं ले जाते थे, कभी नहीं ले गए। तो बाबा ने पूछा, बच्चे आत्म को क्यों नहीं लाते हो? तो एक दिन मुझे स्पेशल, मैं गया बाबा से मिलने के लिए, भले बहुत दूर था, तो बाबा ने क्या किया, क्या भाषण दी, देखो हम सभी को बुलाया। बाबा सवेरे सवेरे दूध पीते थे थोड़ा, तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे आओ, मैं तुम्हारी माँ हूं, चम्मच से हमारे मुख में दूध पिलाया, बताइए। माँ की तरह जैसे होता ना, देखो कहते दूध, कहते फीका दूध मैं पिला रहा हूं, बाबा फीका पीते थे, कि देखो माँ जो है तुम बच्चों को दूध पिला रही है। आप बताइए, हम जब याद करते हैं वो सीन याद आता है, तो क्या ये शुद्ध संकल्प नहीं? अगर याद आ तो क्या बड़ी बात है। बाबा से हम खेलते थे तो बाबा साथी याद है, कंपेनियन याद है, तो क्या है? बाबा से हाथ पकड़ के चलते थे तो क्या हमारा साथी हो गया, कंपेनियन हो गया ना? इस प्रकार से चलते रहे, करते रहे। तो 3-4 साल भ्राता जी के साथ रहे, फिर और भिन्न भिन्न ड्यूटीज मिली। तो क्या हुआ, 1964 होगा या कुछ होगा, तब सीढ़ी का चित्र निकला, एक सीढ़ी है ना, वो निकला। बॉम्बे में इन्वेंशन सीढ़ी हुई और प्रदर्शनी भी इन्वेंशन हुई, तो हमारे पास एक स्लाइड आई, तो हमने उसका सीढ़ी का चित्र बनवा के, यानी कुछ तो नवीनता चाहिए, सीढ़ी का चित्र बनवा करके बड़ा सुंदर चित्र बनवाया ऑयल पेंटिंग में, उसको रिबन लगाया, वो लगाया 6x4 का, जैसे ना ये ये तो बड़ा था उससे छोटा। हमने मधुबन भेजा, दादा बिजकिशोर बड़ी दादी आए हुए थे भेजा, तो बाबा को बहुत अच्छा लगा। पहली पहली अटेम्प्ट इंडिपेंडेंट तो सेवा की, बाबा ने उस समय के बाद लेटर लिखने शुरू कर दिए मुझे, बच्चे ये बनवाओ ये करो, देखो इसमें है ये, इसमें चेंज कर दो, ये गुलजारीलाल नंदा बैठा लेटा हुआ देखो, ये इसको लिटा दो उस पर कांटों के सेज पर, पीछे फाइव ईयर प्लान रखो और भीख मांग रहा हो। बाबा बड़े बड़े फोर्स से कहते थे ये बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, डर की बात नहीं थी, तो हम करते थे। तो इस प्रकार से सेवा शुरू कर दी। फिर हमने चित्रशाला खोल ली वहां पर दिल्ली में, आप पता किसी को मालूम का नहीं है, वो तीन चार आर्टिस्ट एम्प्लाय किए और उनको चित्र बनवाने शुरू कर दिए, यानी ये प्रदर्शनी का चित्र होता ना, ये सब चीजें बनानी शुरू की। और बना करके हम एक सेट बाबा के पास लाए, 20 चित्रों का सेट वो लाए, उसका हिस्ट्री आल बन चुका था, हमने यहां रखा। बाबा और दीदी या मम्मा आए, दीदी होंगी, सारा उन्होंने देखा, बाबा को अच्छा लगा, कोई करेक्शन दी डायरेक्शन दी, और फिर वो वहां चले गए अपने कमरे में। बाबा अपने कमरे में मुझे बुलाया, देखो फिर और वरदान बाबा क्या देते हैं। मैं नीचे बैठने लगा, बाबा ने नहीं बच्चे मेरे साथ बैठो गद्दी पर बैठो, मैं तो संकोच कर रहा पर गद्दी पर बैठा। फिर बाबा ने महाबाग के चरण के वरदान दिया, बच्चे जो बाप की गद्दी सो किसकी, हम बच्चों की गद्दी, ये नहीं यहां भी और वहां भी, वहां कहां पर गोल्डन एज, हम भी तो यहां बाबा की गद्दी संभालेंगे तो वहां भी गद्दी संभालेंगे। अब देखो आप सब गद्दी संभालते हैं, आप क्या समझते हैं, आपका घर भी जो कारोबार करते हैं किसका है, वो किसका है, बाबा का है ना, तो वही बाबा का हो गया ना। अब हम ज्ञानमृत भवन में रहते हैं संभालते हैं, इतना बड़ा कारोबार किसका है, बाबा का है। तो यहां अगर संभाल, जो बहने सेंटरों पर रहती है सेवा करती है किसकी है, सब बाबा के सेंटर है ना, जो बाप भी गद्दी संभालेंगे तो वहां भी गद्दी संभालेंगे, ला है। लेकिन इन महावाक्यों से इतना मजा आया, इतना उमंग उत्साह भर दिया बाबा ने, बात मत पूछ। इसलिए बाबा कहते हैं जिसमें थोड़ा सा भी, हम क्या करके आए थे, छोटा सा काम करके आए थे, तो अगर कोई छोटा सा भी काम करता है तो उसको और उसको मैग्निफाई करके उमंग उत्साह में लाना चाहिए। तो ये छोटा सा काम किया, बाबा ने बहुत उमंग उत्साह दिया, बहुत नशा चढ़ा दिया, तो क्या इसी एक बात से कितने म्यूजियम बने, कितने प्रदर्शनियां बनी, कितने मेले बने, बहुत फेयर बने, एक छोटी सी चित्रशाला से, पहले और कोई था ही नहीं, अब तो कंप्यूटर से आधे घंटे में सब चित्र निकाल लो, उस वक्त तो कंप्यूटर नहीं थे कुछ नहीं था, सब चीज हाथ से बनानी पड़ती थी। और उस वक्त तो बिगिनिंग था, देखो अभी ना शेप, पहले हम बड़ा गोल छपाते थे, शुरू शुरू में छपाया था इतना वो अंडाकार शेप का, फिर बाबा ने उसको खत्म किया, फिर वो लगाया स्टार लगाया बिंदु लगाया फिर किरणों वाला बना। तो ये धीरे 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 सब बातें आगे आई, इस प्रकार से करते करते हम चले गए, चलते चले और बाबा व्यक्त हुए। तो उसके बाद फिर हम भ्राता जगदीश जी 1984 में फॉरन में उनके बहुत बिजी हो गए, तब हमको ये ज्ञान अमृत मैगजीन ये और लिटरेचर उसकी भी ड्यूटी मिली, और 92 में हम यहाँ पर आ गए शांतिवन में आ गए। और यहाँ तो बहुत बड़ा बेहद की सेवा जैसे हो रही है, बहुत कितने कितने कारोबार हो रहे हैं, चल रहा है मैगजीन्स हैं लिटरेचर है सब कारोबार चल रहा है। तो हम दादी पहले हम बहुत शाही थे, ज्यादा नहीं मिलते थे बहुतों, बाबा से भी बहुत कम मिलते थे, आए बाबा ने कहा ये सेवा करो चले गए। ये फिर दादी प्रकाशमणि से बहुत समय रहने का मौका मिला, तो हम कहते थे दादी को हम तो भाई बहुत सिंपल आदमी हैं, हम तो कोई ज्यादा भाषण करने वाले वो नहीं है और इतने इंटेलिजेंट भी नहीं है। दादी कहती नहीं नहीं इंटेलिजेंट कैसे नहीं है, इतना बड़ा कारोबार कैसे चल रहा है। हमने कहा दादी वो तो ऊपर वाला चला रहा है, दादी के क्या महावाक्य हैं बच्चे, यही तो इंटेलिजेंस है, ये समझना कि ऊपर वाला काम करा रहा है, बाबा करण करावन कहा रहा है, इसमें सब कुछ आ जाता है। थोड़ा भी अपना अहंकार आया कि मैं कर रहा हूं तो मानो वो ठीक नहीं है। इस प्रकार से चलते रहे, काम चल रहा है। अभी हम काफी नदियों में पानी बह चुका, अब कहां पहुंचे हैं, नजदीक तो पहुंचे हम समझते हैं, अब तो क्या बनना है, हमको बाप समान बनना है। अब देखो बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बनना है ना, तो अब कहां तक बने ये देखिए। हम तो हमेशा कहते हैं कर्मातीत फरिश्ता बनने की कई स्टेजेस हैं। पहली स्टेज तो ये है कि हम अभी ब्राह्मण में पहला यह है कि हम विकर्माजीत बने, विकर्म अतीत बन जाए। अब हम ब्राह्मणों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, पहली स्टेज है मोटी। अब ब्राह्मणों में कोई विकर्म होता नहीं होगा, बाबा को फेथ है कि मेरे ब्राह्मण बच्चे कोई विकर्म नहीं करते, ठीक है ना, ये नहीं होता ना विकर्म, क्या ख्याल है? विकर्म नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं होगा। सेकंड स्टेज क्या है, यानी विकल्पाजीत। अब हमारी ब्राह्मणों की इतना स्टेज होनी चाहिए कि कोई विकल्प नहीं आना चाहिए, नो विकल्प नहीं आता होगा, यानी नेगेटिव संकल्प नहीं आना चाहिए। आप जानते हैं नेगेटिव संकल्प से, विकल्प से जो है हमारी जो बैटरी चार्ज होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो डर होना चाहिए कि मेरे हमारे हम बुद्धि में मन में कोई विकल्प ना हो, दृष्टि वृत्ति बिल्कुल प्योर हो, नो विकल्प, विकल्पाजीत। थर्ड स्टेज क्या है, ये स्टेज भी पार करके होंगे आप। थर्ड स्टेज क्या है, व्यर्थ आतीत, नो व्यर्थ। अब बाबा ये कहते हैं कोई व्यर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे व्यर्थ नहीं होगा, जब हमारे में समर्थ होगा तभी व्यर्थ आएगा ही नहीं। और व्यर्थ अतीत के बाद भी नेक्स्ट स्टेज है साधारण अतीत, हमारा कोई संकल्प साधारण नहीं होना चाहिए, हमेशा विशेष हो। बाबा का हर संकल्प, हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प विशेष था, उनकी देखना, उनका उठना, उनका बैठना सब विशेष था। तो हम क्या बनना चाहते हैं, बाप समान, तो हमारा भी बाप समान हर कदम, हर कर्म, हर संकल्प, हमारा बोल विशेष हो, हर बात में विशेषता हो, साधारण अतीत हो जाए, चलते फिरते खाते पीते जो बाबा कहते हैं याद में रहें, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करें, इसी बात में लगे रहें। और तो क्योंकि शुद्ध संकल्प से क्या होगा, पॉजिटिव संकल्प से क्या होगा, पावर आएगी और प्योरिटी आएगी, दो बातें आती हैं, पावर भी आती है प्योरिटी। सत्युग में क्या चाहिए, पावर चाहिए और प्योरिटी चाहिए, क्राउन ऑफ लाइट प्योरिटी और क्राउन ऑफ माइट पावर, दोनों मिलती हैं पॉजिटिव संकल्पों से। तो हम तो कोशिश करते हैं चलते फिरते खाते पीते उठते बैठे यही, कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं, माइट हूं, कर्म इंद्रियों का राजा हूं, मास्टर हूं, प्रकाश, यानी जो अपने सम्मान है उनको बार बार रिवाइज करते चले। बाबा को याद करें, परम धाम में पहुंचे, परम धाम को याद करें, बाबा को देखे, बाबा एक दफा मुरली में कहा था बच्चे मैं तुम्हें देखूं और तुम मुझे देखते रहो, और कुछ दिखे ही नहीं। मैंने दादी जानकी जी से कई दफा बात की, मैं दादी बाबा आंख बंद करते हैं तो बाबा और शिव बाबा दोनों और कुछ दिखता नहीं, आंख खोलते हैं सब दिखते हैं ये। दादी कहती नहीं, आंख बंद करो या आंख खोलो और कुछ दिखे ही नहीं। ऐसा पुरुषार्थ चाहिए, क्या बनना है, बाप समान फरिश्ता बनना, तो पुरुषार्थ चाहिए, आंख बंद हो चाहे खुली हो, क्या देखे वही देखे, बाबा दिखे। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ करते चले और सिंपल बाबा को बड़े प्यार से याद करें। बाबा कहता है बाबा बाबा कहना ये भी योग है, हम जब चलते हैं ना सवेरे सवेरे घूमते हैं हर कदम पे वो लेफ्ट राइट हम कहते हैं बाबा बाबा बस और कुछ नहीं, ये शुद्ध हम कहते हैं शुद्ध संकल्प में रमण करना भी वास्तव में योग है। एक है सार में योग लगाना, एक है विस्तार में योग करना। बाबा ने कहा था ना देखो कि पांच स्वरूपों को याद करो, ये विस्तार है, हम करते हैं। बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है कि सारे दिन में कितनी दफा करना है, याद है किसी को, आठ बार याद करना है। तो आठ बार आप करते हैं, तो आठ बार नहीं करते फिर विनाश कैसे आएगा। बाबा ने होमवर्क दिया कि सारे दिन में आठ बार याद करो, हम वो भी नहीं करते हैं। और अगर याद नहीं भूल जाती है तो रात्रि को सोने से पहले आठ बार करके सो, ये भी बाबा ने मुरली में कहा है, तो करना चाहिए ना, ये नहीं करते तो फिर कैसे होगा विनाश। तो जो बाबा होमवर्क देते हैं उसको हम करें, याद में रहें, बहुत सिंपल याद करें बाबा को, यानी संबंधों से याद करें, गुणों से याद करें। दादी गुलदार जी पता क्या कहती है, याद क्या है, सिंपल है, नाचो गाओ खुशी मनाओ बस, देखो बाबा की मुरली में एक पैरे में आएगा बच्चे याद सिंपल है, अपने को आत्मा से बाप को याद करो। अगले पैरे में आएगा याद में रहना कोई मासी का घर नहीं है, दोनों बातें एक ही मुरली में आ रही है। आप बताइए तो क्या है इसमें, निरंतर याद में रहना मासी का घर नहीं है। याद करना ईजी है परंतु निरंतर याद करना मासी का घर। तो निरंतर याद करें, याद को बढ़ाएं, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करें, बाबा बाबा करते करते कर्मातीत बन बहुत आगे काफी समय काफी बड़े भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और अभी मंजिल तो नजदीक है, सड़पन पर है, और बाबा की याद में रह करके अब आप भट्टी करके जा रहे हैं। कोई भी नहीं, व्यर्थ भी नहीं आना चाहिए, व्यर्थ अतीत बनना और साधारण अतीत। बाबा बाबा करते रहो, सब काम ठीक होगा, कुछ नहीं हम बता दें आपको। लौकिक ज्यादा प्लानिंग भी करने की दरकार नहीं, नो। बाबा को याद करते रहने, हर समय हर बात में बाबा को रखे, कोई डिफिकल्टी नहीं, बाबा सब ठीक करेगा। ये हमारा करण करावन हार वही है, वही कराएगा। हमारा अनुभव तो यही है कि हम इस केवल बाबा को याद करें, उसकी याद में रहें, उसकी आज्ञा पर चलें, श्रीमत पर चलें, तो हमारा सारा कुछ कार्य वो ठीक करा सकता है, हम ठीक हो जाएंगे और जल्दी बाप समान बन जाएंगे। हर बात में जो है बाबा कहता है कि देखो चेहरे और चलन से सेवा करो। कैसे होगा वो चेहरा से सेवा कैसे होगी, जो काला है काला रहे, गोरा गोरा रहे, सेवा कैसे होगी? यानी अगर हम फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, अगर हमारा मन में शुद्ध संकल्प चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो आपके चेहरे में रूहानियत आ जाएगी, लोग समझेंगे हाँ ये रूहानी आदमी है। चलन भी उसका भी यूज क्या है, उसका भी बेसिस क्या है, संकल्प। अगर हम अच्छे शुद्ध संकल्प में रमण करेंगे, हमारी चलन भी ठीक होगी, वाचा भी ठीक होगी। मेन चीज है कि हम लगातार शुद्ध संकल्पों का संचय करते चलें और सब बातें छोड़ते चलें। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। जैसे कहते हैं ना, ज्ञान इतना विस्तार से है, और बाबा का जो भी बच्चा बैठे उसके पास ज्ञान और अनुभव जबरदस्त है। आत्म भाई विशेषता अनुसार बहुत अच्छा अपना अनुभव सुनाया और बहुत नम्र चित्त है ना। तो हम सभी आत्म भाई का एक हाथ की ताली से थैंक्स करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन भाई साहब, नीचे से विशेष आए हैं हमारी क्लास के लिए, और अभी आपने जो कुछ सुना सुबह से लेकर के है ना, उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करने का समय आ जाइए। बेन बिंदु बेन अभी कमेंट्री के साथ थोड़ा योग कराएंगे आधा घंटा। तो जो आपने सुना है ना, उसको कोई भी एक बात को पकड़ करके उसके चिंतन में जाना है ना। आत्मा अपने चिंतन में जाएंगे, और जैसे कहा पुरुषार्थ के दो तरीके होते हैं। एक है कि हम जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उसका चिंतन, और एक है प्रैक्टिकल पुरुषार्थ, वहां तक पहुंचना। एक सोच लेना कि मैं संपूर्ण आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, वो बार बार सोच के फील करना, और दूसरा क्षेत्र है प्रैक्टिकल लाइफ में पवित्र बन जाना है ना। तो योग का जो हमारा क्षेत्र है वो भी बहुत आत्मा को प्रभावित करने वाला होता है। जो हम बार 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 सोचते हैं, हमारी स्मृति से ही स्थिति बनती है। तो इसलिए अभी हम सभी बहुत प्यार से शांति से गहराई में चिंतन करते हुए बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।